ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति और गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 19 दिसंबर की मुरली है। बाबा ने कहा कि हमारी जीवन एक यात्रा है, तो उस यात्रा में कई कठिनाइयां तो आएंगे, दिल शिकस्त नहीं होना है, परंतु अपनी मंजिल को सामने रखना है। हमारी मंजिल क्या है? आज बाबा ने कहा घर जाना है, और घर जाने के लिए तैयारी भी करनी है। उसकी कई बाबा ने विधियां बताई, आज मेथड्स बताए। पहला ये कहा बाबा ने कहा कि बच्चे देही अभिमानी रहो, तभी पार कर पाएंगे, नहीं तो कई बातें आएंगी घुमा देंगे हमारे मन को बुद्धि को, कंफ्यूज कर देंगे, हम मंजिल से दूर चले जाएंगे और विकारों के चक्कर में आ जाएंगे। इसलिए सदा ध्यान रखो कि मंजिल क्या है और जाने का तरीका कौन सा है। दूसरा बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि बनी बनाई बन रही, अब कोई बननी नहीं। ये किसके बारे में बाबा बोलते हैं? ड्रामा। ड्रामा वंडरफुल है, अनादि है, अविनाशी है। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, मैं भी ड्रामा में बंधाए मान हूं, मैं भी तुमको ये जो पढ़ाई पढ़ा रहा हूं इस दुनिया के जो विकारों से निकलने की, ये कोई मेरी बड़ाई नहीं है, ये तो मैं बंधाए मान हूं, आके तुमको पढ़ा करके तुमको स्वर्ग का मालिक बना देता हूं। तो आज बाबा ने यह भी विशेष बताया, नथिंग न्यू। सुनते हैं बाबा की मुरली 19 दिसंबर। मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। प्रश्न है, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, उसमें हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। बाबा कहते बच्चे इसमें मेरी भी तो कोई बड़ाई नहीं है, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। बाप ये वंडरफुल राज सुनाकर जैसे अपने पार्ट को भी महत्व नहीं देते। कितना बाबा हम्बल है, निरंकारी है, इतनी बड़ी सेवा दुनिया को बदलना। बाबा कहते हैं ये भी मेरा ही पार्ट है, इसमें क्या बड़ी बात है। गीत, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये गीत गा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कल्प के बाद फिर से हमको धनवान, हेल्थी, वेल्थी बनाने, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं, लौकिक में भक्ति में देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भाव, और कौन सा देते हैं, पुत्रवान भाव, और तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की कोई बात नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं। जानते हैं 5000 वर्ष पहले हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी। बच्चे जो पढ़ते हैं वो जानते भी हैं। दो बातें हैं बाबा ने कहा, वो क्या जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला कौन है। उसमें नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। ये तो कहेंगे ही कि हम बच्चों को मालूम है कि हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, और फिर क्या बनना है, देवता बनना है। दुनिया में किसी को यह पता नहीं है कि अभी हम शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो, ये तो सत्य बात है। बाप सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। बाबा ने बताया सतयुग में क्या दो बातें नहीं होती, झूठ और पाप। इस दुनिया में तो झूठ है, हाँ, सारे दिन में कितने लोग झूठ बोलते हैं। बाबा ने कहा वहां झूठ और पाप कुछ नहीं होता, और कलयुग में बाबा ने कहा अजामिल पाप आत्माएं होती हैं। ये तो समय बिल्कुल रोर और नर का ही तो है, इसकी निशानियां बाबा बता रहे कलयुग की, रोरव नरक की। दिन प्रतिदिन रोरव नरक दिखाई पड़ेगा। मनुष्य तो ऐसा ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है, और उसमें भी काम काम महाशत्रु है। कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता है। आगे फकीर लोग कहते थे ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियां बच्चा पैदा करेंगी। अब वही समय है, कुमार कुमारियां आदि सब गंध करते रहते हैं। जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप कहते मैं आता हूं। मेरा भी तो ड्रामा में पार्ट है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। कब आता है बाबा, जब सारी दुनिया तमो प्रधान है तो मैं आता हूं, ड्रामा में मेरा पार्ट है। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है, बाबा समझाते ही ऐसे हैं। कितना आसान, बाबा बताते हैं कि मैं आता हूं और समझाता हूं। क्या समझाते हैं, बच्चे आपने चक्कर लगाया, सभी ने लगाया चक्कर, कितने जन्मों का, 84 जन्मों का। तो बाबा ने कहा चक्कर लगा लिया, और दूसरा अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा को याद करो तो तुम सत्तो प्रधान बन, सत्तो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना आसान, बाबा ने बताया चक्कर पूरा होता है, नाटक पूरा होता है। अभी हमारा ध्यान किस पर रहे, बाबा की याद, तो सत्तो प्रधान बन जाएंगे और सत्तो प्रधान दुनिया के मालिक भी बन जाएंगे। कितना साधारण रीति समझाते हैं। बाप कोई अपने पार्ट को इतना महत्व नहीं देते, कहते हैं ये तो मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं है। हर 5,000 वर्ष के बाद मुझे आना पड़ता है, ड्रामा में मैं बंधाएमान हूं, आकर के तुम बच्चों को बहुत सहज बाबा कहते हैं याद की यात्रा बताता हूं। हाँ, सारी मुरली किस पर जा रही है आज? देही अभिमानी, बाबा की याद, सत्व प्रदान बनना, और कितना आसान यात्रा कौन सी? बाबा की याद की। अंत मते स्वगति, वो इस समय के लिए कहा जाता है, ये अंत काल है। तो बाबा एक युक्ति बताते हैं अंत काल में क्या करना है। इतनी सारी बातें हैं दुनिया में, कुछ याद ना करके क्या याद रखो? अंत काल है तो अंत काल में बाबा ये कहते हैं माम एकम याद करो तो सत्व प्रधान बन जाएंगे। बच्चे समझते तो हैं, हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा भी घड़ी घड़ी कहता है, हाँ बार बार बाबा क्या सब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं? एक तो ड्रामा का नाटक पूरा हो रहा है, अंत काल है, मुझे याद करो, अभी बाबा फिर याद कराते, कहते बाबा तो घड़ी घड़ी कह रहे हैं नथिंग न्यू, किसी बातों में जाओ ही नहीं, नथिंग न्यू। एक जिन की कहानी है, उसने कहा काम दे दो मुझे, उसको क्या काम दिया था? कहा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तो बाबा भी कहते हैं क्या करो? मन और बुद्धि से बाबा को याद करो, आओ कर्म करो, पार्ट प्ले करो, फिर बाबा को याद करो। बाप भी कहते हैं ये खेल है। ये खेल कौन सा है? उतरने और चढ़ने का। तो इस खेल को बाबा ने 2-3 बार बताया, ये खेल है उतरने और चढ़ने का। और दूसरा क्या ये खेल है? पतित से पावन बनने का और पावन से पतित बनने का। ये कोई डिफिकल्ट बात तो है ही नहीं, है तो बहुत सहज। परंतु हाँ, इस खेल में क्या हो रहा है? पावन का खेल तो है आसान, लेकिन युद्ध होता है इस खेल में। ये ना समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिख दी। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना तो बहुत बड़ी लड़ाई है। बच्चे देखते तो हैं, हम घड़ी घड़ी बाबा को याद तो करते हैं, फिर बाबा की याद टूट जाती है। माया दीवाई बुझा देती है। तो बाबा ही कहते बच्चे जीत पाओ बहुत अच्छे चलते हैं, फिर माया आकर दीवा बुझा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा क्या करें, माया के तूफान बहुत आते हैं। तूफान भी तो अनेक प्रकार के होते हैं, बच्चों के पास आते हैं। कभी कभी तो ऐसा तूफान जोर से आता है जो 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ में गिर पड़ते हैं। इस यात्रा में बाबा बताते क्या क्या होता है। माया आती है, कई प्रकार के संकल्प आते हैं, कमजोरी है ना आत्मा में, तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर तूफान आते हैं, 8-10 वर्ष के बाद गिर पड़ते हैं। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज है ही नहीं। हाँ, ये क्या है? बाबा ने कहा कि आज है ही नहीं वो। ये भी मिसाल तो है, गज को ग्रह ने खाया। ये है माया का तूफान। कभी कभी डाउट आ जाता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते इसलिए कौन सी युक्ति बताई होगी। पहले पेज में सारा बाबा बता देते, बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो। अभी बाबा ने कहा ये यात्रा है, नाटक है, खेल है, कई बातें आएंगी, लेकिन पांच विकारों से संभाल रखते रहो। याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो। ये शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है। कौन सी शिक्षा? इन सभी बोलो, देही अभिमानी की। उसके पहले याद में मजबूत रहना, उसके पहले विकारों से अपनी संभाल करना। विकार आके चला जाए पता ही ना चले तो। तो इसलिए बाबा की संभाल रखो, याद में रहोगे तो मजबूत हो जाओगे, देही अभिमानी बनो। ये शिक्षा है बाबा की, बस एक ही बार मिलती है। ऐसा कभी और तो कोई कहता भी नहीं तुमको। गुरु हैं, गुसाई हैं, प्रीस्ट हैं, कोई भी है, वो थोड़ी कहते हैं देही अभिमानी बनो। ये तो एक बाबा ही कह सकते हैं। सतयुग में भी कोई नहीं कहेगा तुमको। नाम, रूप, देश, काल सब याद रहते हैं। इस समय तुमको समझाता हूं एक तीसरी विधि बाबा बता रहे हैं। एक तो विकारों से संभाल रखो, ये यात्रा है। तीसरी विधि, तीसरा है क्या? याद रखो, अब वापिस घर जाना है। तो ऐसे चले जाएंगे क्या घर वापिस? इतना फैलाव है नहीं, आत्मा कहां कहां उसकी बुद्धि अटकी पड़ी है, सब तरफ से निकालना है। तो बाबा ने कहा भी वापिस घर जाना है। तुम पहले सत्व प्रधान थे, सत्व रजो तमो में तुमने पूरे 84 जन्म लिए, उसमें भी नंबर वन ब्रह्मा बाबा है। औरों के 83 जन्म हो सकते हैं, इनके लिए पूरे 84 जन्म। ये पहले पहले श्री नारायण थे, इनके लिए कहते हैं गोया सब के लिए समझ जाते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर ये नारायण बनते हैं। झाड़ में दिखाया है यहां श्री नारायण और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है और नीचे राजयोग सीख रहे हैं। प्रजा पिता को कभी क्या नहीं कहेंगे? प्रजा पिता ब्रह्मा बाबा को क्या नहीं कहेंगे? परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता एक को ही कहा जाता है, प्रजा पिता फिर इसको कहा जाता है। ये देहधारी है और वो विदेही है, विचित्र है। लौकिक बाप को भी पिता कहते हैं, लेकिन क्या नहीं कहेंगे लौकिक बाप को? प्रजा पिता नहीं कहेंगे। वो तो यहां साकारी दुनिया में है, सूक्ष्म वतन में नहीं है। प्रजा तो स्थूल वतन में है। प्रजा पिता को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान माना जिसका शरीर ना हो, मनुष्य तन जिस पर नाम पढ़ते हैं उससे वो न्यारा है। आत्माएं वहां रहती हैं तो स्थूल नाम रूप से न्यारी हैं, परंतु आत्मा तो है ना। साधु संत आदि सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के तो अनुभवी हैं। छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं रहता, इसलिए उसको महात्मा कहा जाता है। पांच विकारों का उनको पता नहीं रहता, इसलिए छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता है। इस समय कोई पवित्र आत्मा हो न सके, छोटे से बड़ा होगा फिर भी तो पति थी तो कहेंगे। तो बाबा समझाते हैं, सबका अलग अलग पार्ट इस ड्रामा में नूंधा हुआ है। इस चक्र में कितने शरीर लेते हैं ब्रह्मा बाबा? तो पूरे 84, बाकी बाबा ने कहा 83, हर एक के अपने अपने हैं। बाबा ने कहा 84 जन्मों की कहानी। तो बाबा ने कहा इस चक्र में कितना श्री लेते हैं, कितने कर्म करते हैं, जो सब फिर रिपीट होना है। पहले पहले आत्मा को पहचानना है। तो आत्मा के बारे में कौन सी बातें? पहली, इतनी छोटी आत्मा 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये है सबसे वंडरफुल बात। इतनी छोटी आत्मा बिंदु रूप और उसमें कितने पार्ट भरा हुआ है। बाबा ने कहा वंडरफुल है, आत्मा भी अविनाशी और दूसरी बात कौन सी अविनाशी? ड्रामा भी अविनाशी, बना बनाया है। इसके लिए ये नहीं कह सकते कब से शुरू हुआ। इसको बाबा क्या नाम देता है? बना बनाया। और दूसरा भी एक नाम देता है बाबा, कौन सा? कुदरत। इसको कुदरत कहा जाता है। बाबा ने कहा कुदरत कहते हैं, आत्मा कैसी है, ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, जैसे एक बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे समुद्र है, आकाश का अंत नहीं निकाल सकते, ये भी अविनाशी ड्रामा है। कितना वंडर लगता है। जैसे बाबा वंडरफुल है और उसके साथ क्या वंडरफुल है? ड्रामा भी हो गया, बाबा भी हो गया, आत्मा भी हो गई, अभी और बताओ, ज्ञान भी वंडरफुल है। कभी कोई बता ही नहीं सकता। इतने सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते ही आते हैं। ये तो बाबा ने हम सबको बताया, बाकी उनको कहां पता है कि वो आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा पार्ट बजाते आते हैं। नाटक कब बना ये कोई प्रश्न भी नहीं उठा सकते। बहुत कहते हैं, बहुत क्या कहते हैं, भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख और सुख की दुनिया बैठ बनाई। तो बाबा क्या उत्तर देता है इसके लिए? अरे ये तो अनादि है, प्रलय तो होती नहीं, बनी बनाई है। ऐसे थोड़ी कह सकते हैं ये क्यों बनाई। आत्मा का ज्ञान बाप तुमको तब सुनाते हैं जब तुम समझदार बनते हो। तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहते हो। पहले पहले बाबा बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाता था। बाबा बताते हैं ना, पहले जब संस्था चालू हुई कराची में, बाबा थोड़ा थोड़ा सुनाता था, फिर जितना समझदार बनते गए और बाबा सुनाते गए। तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहते हो। पहले तो बाबा बहुत थोड़ा सुनाते थे, वंडरफुल बातें थी, कशिश भी थी, उसने खींचा, भट्टी की भी कशिश थी। शास्त्रों में फिर दिखाया, कृष्ण को कंसपुरी से निकाल ले गए। अब तुम जानते हो कंस आदि तो वहां होते नहीं, कहां सतयुग में, कहां होते हैं कंस कलयुग में। तो बावन का दिखाते हैं शास्त्रों में, तुम जानते हो कंस तो वहां होते ही नहीं है। गीता, भागवत, महाभारत, ये सब कनेक्शन रखते हैं, हैं तो कुछ भी नहीं। समझते हैं दशहरा परंपरा से चला आता है, अब रावण क्या चीज है ये भी नहीं जानते। तो जो देवी देवता थे वो नीचे उतरते उतरते पतित बन गए। रड़ियां भी तो वही मारते हैं जो जास्ती पतित बने हैं, इसलिए पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं भक्ति में? हे पतित पावन आओ। हर आत्मा पुकारती है, दुखी है ना कोई कारण से, तो बाबा को पुकारते हैं सुख दो। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि अंत को कोई नहीं जानता। तुम, बाबा ने कहा भी तुम जानते हो इसको, तुम जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। त्रिमूर्ति में भी लिखा हुआ है, आपको याद है त्रिमूर्ति के पिक्चर में क्या लिखा हुआ है? हिस्ट्री हॉल में है ना त्रिमूर्ति की पिक्चर, तो उसमें लिखा हुआ है ये बात। कौन सी? ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस ज्ञान को पाना, समझना, और बाबा ने कहा तुम इसको जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। त्रिमूर्ति में लिखा भी हुआ है ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। विनाश तो जरूर होना है, रोज बाबा किसको याद करता है? विनाश को। होना है या हो रहा है? हो रहा है अभी। बाबा ने कहा जरूर होना है। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होते हैं, अब तो अनेक धर्म हैं। समझते हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं, फिर जरूर वो एक धर्म चाहिए। महाभारत भी गीता से संबंध रखती है, ये चक्कर चलता रहता है। इस चक्कर की एक और विशेष बात बाबा बता रहे, एक सेकंड भी ये चक्कर बंद नहीं हो सकता, अनादि है, चलता रहता है, हर एक अपना पार्ट है, बंद नहीं हो सकता, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत बारी रजाई ली है, बाबा कहते हैं जिसका पेट भरा हुआ होता है उसकी निशानी क्या होती है? क्या निशानी होते हैं? बाबा कहते हैं जिसका पेट भरा हुआ होता है उसकी निशानी क्या होती है? जो सेटिस्फाई रहते हैं अंदर, संतुष्ट रहते हैं, सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा है, संतुष्ट है, उसकी निशानी क्या होगी? वो गंभीर रहते हैं, उथल पुथल नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते किसी भी बात की, गंभीर रहते हैं। तो बाबा इसकी बात कनेक्ट कर रहे हैं, अंदर में समझते हो हमने कितनी बार राजाई ली थी, कल की ही बात है। कल हम देवता थे, फिर चक्र लगाए, आज हम पतित बन गए, फिर हम योग बल से विश्व की बादशाही ले लेते हैं। तो बाबा कहते कलप कलप तुम बादशाही लेते हो, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। लेकिन बाबा कहते कि रजाई में भी कोई कम और कोई ऊंच बनेंगे, मिल तो सबको रही है। बाबा ने कहा रजाई, कौन सी रजाई, कौन सी रजाई, विश्व की, सत्यु की, कर्म इंद्रियों को जीतने की। हा? बाबा ने कहा ये ताकत तो मिल रही है आत्मा को, लेकिन इसमें भी फर्क है कि कोई को कम कोई को जास्ते। ये किस पर निर्भर करता है, हमारे पुरुषार्थ पर। बाबा तो सबको दे रहे हैं पावर, लेकिन कोई लेता है कोई कम लेते हैं, कोई कम कोई ऊंच, ये सब पुरुषार्थ के आधार से होता है। तुम जानते हो, क्या जानते हो, हाँ पहले पहले बाबा बताते, तुम जानते हो हम सत्व प्रधान थे, देवता थे। अभी बाबा क्या बता रहे, तुम जानते हो पहले क्या थे, बताओ क्या थे पहले। बाबा ने कैसे देखो कनेक्ट किया, बाबा ने कहा तुम पहले बंदर से भी बदतर थे और अब मंदिर लायक बना रहे हैं। पहले पुजारी अब पूजे, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज करती है। फिर थोड़ा और बाबा डीप बताता है, बंदर से बदतर माना क्या, रियलाइज करती आत्मा, बरोबर हम तो कोई काम के ही नहीं थे। ये तो बाबा ने ज्ञान सुनाया, सुबह उठो बाबा को याद करो, नहीं तो सोए रहते, मुरली सुनो, डिसिप्लिन में आओ, हाँ कुछ तो बन के दिखाओ जीवन में। तो बाबा कहते तो पहले क्या था जीवन, कोई काम के नहीं थे, अब हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। कलब कलब बाप हमको पैनी से पाउंड बनाते हैं। कलब पहले वाले भी इन बातों को अच्छी रीत समझेंगे। तुम भी प्रदर्शनी तो करते हो, इन द्वारा तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। भक्ति मार्ग में देवियों के कितने मंदिर हैं, उसको कहते हैं पुजारीपन की सामग्री। पूज्यपन की सामग्री कुछ नहीं है, हाँ खाली नोटबुक पेन लेके आते हैं हमने। तो दुनिया में लोग जाते हैं मंदिरों में, फूल मालाएं धूप अगरबत्ती कितनी चीजें लेके जाते हैं, सामग्री होती है बहुत, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बस बाबा तो रोज गुहे पॉइंट समझाते हैं, आगे की ढेर पॉइंट्स तुम्हारे पास रखे हैं, वो अब क्या करोगे। हाँ कितने ब्राह्मण लिखते हैं ना नोटबुक में, तो उनका क्या करोगे, ऐसे पड़ी रहती हैं। प्रेजेंट तो बाप दादा नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं। आत्मा तो बहुत छोटी सी बिंदी है, उसमें सारा पार्ट भरा हुआ है। ये पॉइंट कोई आगे वाली कापियों में थोड़ी होगी, फिर पुरानी पॉइंट्स को तुम क्या करोगे, पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है। तो बाबा कहते कल पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था, नंबर वार पढ़ते रहते हैं, कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होते रहते हैं। हाँ बाबा फिर अभी हमारे ब्राह्मण जीवन के बारे में बताते हैं, ऊपर नीचे की बात कैसे कनेक्ट करता है बाबा, व्यापार, जैसे व्यापार होता है उसमें भी ग्रहचारी बैठती है। कोई बहुत धनवान हो, उसको कुछ ऐसा हो कि वो बैंकरप्ट हो जाए, ग्रहचारी कहते हैं ना उसको, खत्म हो गया धन रातों रात, हाँ इतना बड़ा धनवान कंगाल हो जाए, व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती है। इसमें फिर हार्ट फेल नहीं होना है। हमारे भी जीवन में बाबा कहते ग्रहचारी बैठती है, क्या है ग्रहचारी, भोगना, विकारों का प्रभाव। हा? तो बाबा कहते कि इसमें फिर हार्ट फेल नहीं होना है, फिर उठकर पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते गिव अप नहीं करना है अपने ब्राह्मण जीवन में, फिर उठकर पुरुषार्थ करना है। जैसे व्यापार में भी दिवाला निकालते हैं मनुष्य, फिर धंधा कर लेते हैं, फिर धनवान बन जाते हैं, होता है ना ऐसे। यहां भी विकार में गिर पड़ते हैं, फिर भी बाबा कहेंगे अच्छी रीत पुरुषार्थ करो, ऊंच पद पाओ। ग्रहचारी माना जो मन में बार बार भोगना, भोगना समझते हैं सफरिंग, मन बार बार दुखी होता रहता है। खाना पीना ठीक मिल रहा है, घर ठीक मिल रहा है, सब ठीक चल रहा है, फिर भी मन खुश नहीं है, उसको हम कहते हैं ना भोगना, कुछ बैठी है ग्रहचारी। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप गिवअप नहीं करो, लेकिन पुरुषार्थ करो। जैसे धंधे में भी लोग धनवान बन जाते हैं, यहां कोई विकार में फिर गिर पड़ते हैं, तो बाबा तो कहेगा अच्छा बच्चे फिर उठो, पुरुषार्थ करो, ऊंच पद पाओ, फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि मेरे से नहीं होता है, अभी नहीं कर सकते। बाबा ने कहा नहीं, फिर से चढ़ो। बाबा तो कहते हो गिरे हो फिर चढ़ो, ऐसे बहुत है, गिरते हैं फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बाबा मना थोड़ी करेगा, हाँ कोई भी माँ बाबा मना थोड़ी करेगा बच्चे को, करो पुरुषार्थ आगे बढ़ो। बाबा जानता है ना ऐसे भी तो आएंगे ना बहुत, बाबा तो कहेगा बच्चे पुरुषार्थ कर लो, फिर भी कुछ ना कुछ मददगार तो बन जाएंगे ना, ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाबा कहेंगे अच्छा बच्चे अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए हैं, फिर पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप है ना, ऐसे तो कहेगा। बाबा के पास तो बहुत मिलने आते हैं, कहता हूं बेहद के बाप का कहना नहीं मानोगे, पवित्र नहीं बनोगे। बाप आत्मा समझ आत्मा को कहते हैं, तीर तो जरूर लगेगा। समझो स्त्री को तीर लग जाता है तो कहेंगे हमने तो प्रतिज्ञा की थी, पुरुष को तो नहीं लगा, फिर आगे चल। हाँ, उनको भी बाबा ने कहा वो स्त्री जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है, हाँ, फिर कहते हैं स्त्री हमारा गुरु है। वो ब्राह्मण लोग हथियाला बांधने समय कहते हैं ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है, हाँ? जो फेरे लेते हैं ना उस समय कहते हैं ना स्त्री के लिए, ये पति तुम्हारा गुरु है। और यहां पर वो ज्ञान में ले आएगी तो वो गुरु हो गई। यहां बाप कहते तुम्हारा गुरु कौन है, सतगुरु कौन है, एक बाबा। यहां तो एक ही बाप सब कुछ है, हाँ उसके लिए क्या कहते हैं बाबा के लिए, हाँ बहुत आसान सा एक गीत तो नहीं कहेंगे, कुछ है ऐसे शब्द जो हम हमेशा कहते हैं, कौन से, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। आप सब बोलो कौन है बाबा, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। बाबा कहते तुम्हारा तो एक ही बाप है, सब कुछ है, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, सब तो उसको ही तो याद करते हैं, इसलिए उस एक से ही योग लगाना है। हालांकि ये देह भी मेरी नहीं है, जिसको हम 24 घंटे साथ रखते हैं, बाबा ने कहा ये देह भी मेरी नहीं है। अच्छा अच्छा के बाद मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ। कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त होकर बैठ नहीं जाना है, फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रहकर ऊंच पद पाना है। दूसरा है, स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार ना कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। स्वयं की स्थिति याद से मजबूत बनानी है, कोई भी माया का तूफान वार ना कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। वरदान, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भाव। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भाव। यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूं, तो जो भी संकल्प करेंगे, बोल बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस हो, उस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। स्लोगन, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्म तीन बनने की धुन लगाओ। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। कर्म भी करो, याद में भी रहो। जो सदा कर्म योगी की स्टेज पर रहते हैं वो सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। जब चाहे कर्म में आए, जब चाहे न्यारे बन जाए। ये प्रैक्टिस कर्म के बीच बीच में करते रहो। ओम शांति। तो हम कौन है? चैतन्य लाइट हाउस है। और तीन बातें कौन सी बताई बाबा ने? कहा यात्रा है, दिल शिकस्त नहीं होना है, विकारों से अपने को संभालना है। और दूसरा बाबा ने कहा, देखो मेरा भी पार्ट है, मेरी कोई बड़ाई नहीं है, तुम गिर गए थे, मैं अभी चढ़ाने आया हूँ। सत्व प्रधान बना के मालिक बनाने आया, मेरी कोई बड़ाई नहीं है, कोई तुम गिरे थे तो मैं मदद कर रहा हूँ तुमको, क्या बड़ाई है। तो बाबा ने कहा मैं भी बंधाईमान हूं। और तीसरा बाबा ने कहा बार बार प्रैक्टिस करते रहो, कौन सी देही अभिमानी की, याद टूटती है कई और संकल्प आएंगे, फिर बाद में फिर प्रैक्टिस करते रहो, फिर प्रैक्टिस करते रहो, मजबूत हो जाएंगे। तो बाबा रहम दिल है, कितनी मदद कर रहा है हमको, रोज इतनी पढ़ाई पढ़ा के फिर कहते हैं मेरी बड़ाई क्या है, एक शब्द नहीं बोलता, मैंने इतना पढ़ाया चुरा कितने साल हो गए, बोलता नहीं है बाबा ऐसे है, कहते मेरी बड़ाई नहीं है, पढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो। तो बाबा के कितने वरदान है हम सब बच्चों के लिए। ओम शांति। बाबा को याद करना।
ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य सुनाने के लिए रजनी दीदी खास ज्ञान सरोवर से हमारे बीच में आए हैं, और लगभग पिछले 2 महीनों से आप ज्ञान सरोवर में सभी विदेशी भाई बहनों की पालना के निमित्त और अपनी भी पालना लेने के लिए, खुद की पालना करने के लिए रुके हुए हैं, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। और भारत में भी आप ब्राह्मणों की पालना के लिए बीच बीच में निमंत्रण मिलते हैं तो चक्कर लगाते रहते हैं, और वैसे आप अनेक वर्षों से जापान और फिलीपींस की सेवाओं को संभालते हैं, ज्यादातर वहां ही रहते हैं और अभी जाने वाले हैं, फिर वापस शिवरात्रि के समय हमारे बीच में हाजिर होंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि अभी थोड़ा क्लास पूरा होने में समय पड़ा हुआ है, तो आप चाहे तो भारत की सेवाओं के 2 मास के कोई भी अनुभव हो आपके तो आप हमारे साथ शेयर करें।
भारत की सेवा में मेरे को इस बार अच्छा चांस मिला था, 2-3 स्थानों पर मैं गई थी। एक जगह है गुजरात में, विसनगर कहते हैं उसको, तो वहां पर योगिक एग्रीकल्चर का मॉडल है, वो गोबर से नहीं क्ले से सारा कमरा बनाया हुआ है, जो पुराने जमाने में रोटला बनाते थे वो बनाते हैं वहां पर, ऑर्गेनिक खेती है। तो इस बार हमने ना विदेशियों को वहां भेजा था और मैं लेके गई थी विदेशियों को भी, तो उनको अनुभव कराने के लिए जैसे ऑर्गेनिक चीजें कैसे होती हैं। बहुत बड़ी जगह है उनकी, 3 एकड़ धरती है, उस पर उन्होंने सब चीजें उगाई हुई हैं, प्रोड्यूस किया हुआ है, और हम लोग वहां गए थे तो बहुत अच्छा लगा वहां पर। और पहली बार मैंने गांव की सेवा की, गांव है वो, तो बहुत सारे गांव के लोग शाम को पैदल आते हैं, वो ये गाय भैंस का ध्यान रखते हैं अपने घरों में, मतलब गांव के जैसे होते हैं ना दिनचर्या, तो वो शाम को आए थे 1 घंटे के लिए, तो हम लोगों ने बाबा का उनको ज्ञान सुनाया। बहुत बेचारे भावना वाले थे ये जो भी आए थे वहां पर, 70-80 के करीब होंगे जो शाम को आए थे उस दिन, तो उनकी भावना देखकर भी मेरे को बहुत खुशी, इतनी अच्छी भावना कि इतना बड़ा बाबा का घर बनाया हुआ है उन्होंने, 1000 लोग बैठ सकते हैं ऐसा हॉल है, और बहुत बड़ा ओपन ग्राउंड में गार्डन है जहां पर स्टेज बनाई है, वहां पर पब्लिक प्रोग्राम होते हैं वहां पर भी, और सारा मॉडल उन्होंने तैयार किया है, और रिसाइकलिंग करते हैं चीजें, जैसे हमारे नहीं पुरानी वो सीडी होती थी, तो वो सीडी इन्होंने बहुत सुंदर उसको रूप देके कर्टन पर लगाने के लिए तैयार की हुई है, और कांच है वहां पर, कांच का काम बहुत होता है, तो वो कांच की भी चीजें रिसाइकिल की हुई है, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि कितना साधारण जगह को उन्होंने इतना विशेष बनाया है। 3 बहनें रहती हैं, इतना बड़ा घर है, सारी सफाई भी वो ही लोग करते हैं, कर्म योगी हैं, सफाई वो खुद करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं।
एंजल पार्क
कहते हैं उसको वहाँ, तो वो मुझे बहुत पसंद आया, तो वो हमारे ग्रुप्स जाते रहते हैं वहां पर, तो हम भी गए थे इस बार और रुके थे वहां पर, तो पूरा अनुभव किया, और वो जैसे खेती बाड़ी वाली जगह है और एंजल पार्क है, और सभी आते हैं भाई बहन पैदल और क्लास करने के लिए सुबह शाम, वो भी हमने देखा, बहुत भावना वाली जगह है। और दूसरी एक जगह है, मैं गई थी लखनऊ, तो लखनऊ में राम मंदिर देखा, वो भी हमने, उन्होंने बनाया था हमारा प्रोग्राम, तो पहली बार गए थे। जो भक्ति की जगह है भारत में, कितने देवी देवताओं को मानने वाले, तो वो मेरे को भासना आई। यूपी साइड में काफी भक्ति को मानते हैं, तो वो मेरे को वाइब्रेशन आए कि कितने लोगों की इतनी भावना है देवी देवताओं में। और जो बाबा का घर बना है वहां पर, गुजार उपवन क्या कुछ क्या कहते हैं, शांति कॉटेज या कुछ कहते हैं, 6 मंजिल का बना है मकान, राष्ट्रपति ने वो उद्घाटन किया ना 28 नवंबर को, तो मैं उसके कुछ ही दिन पहले वहां थी और देखा अभी बन ही रहा था, और कैसे भाई बहनों ने उनको बहुत अच्छा सजा के ठीक ठाक करा के उद्घाटन करवाया, बहुत बड़ा है। और बहुत सारे भाई बहन वहां पर सेवा कर रहे हैं, कर्मयोगी हैं, सफाइयां कर रहे थे, खूब जोर शोर से ये प्रोग्राम चला। तो मेरी तो ज्यादा क्लासेस थी वहां पर ब्राह्मणों के लिए, टीचर्स क्लास थी और स्टूडेंट्स की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा थी, और साथ में पब्लिक प्रोग्राम था। तो उस तरफ तो हम पहली बार गए थे, है ना, लखनऊ में हम लोग कहाँ जाते हैं, लेकिन दादी गुलजार का हम सुनते थे ना, दादी गुलजार की कहानी लखनऊ की, तो मेरे को था कि एक बार देख के आना चाहिए। उन्होंने बुलाया भी था कई बार कि आओ, तो ऐसे कुछ दिन के लिए। बहुत बहुत सुंदर बाबा का घर है, बहुत सुंदर सेंटर्स हैं सभी जगह पर भारत में। तो जैसे कहते हैं ना अभी सब बाबा कहते हैं भरपूर हो गया है ना, पेट भरपूर है, इतने बड़े बड़े सेंटर, इतनी बड़ी बड़ी संख्या में ब्राह्मण्स हैं, और इतनी बड़ी बड़ी लेवल की सेवाएं, बहुत अच्छा है वहां पर सारे भारत में, जहां भी जाओ। अभी नेक्स्ट टाइम मैं और 2-3 जगह जाऊंगी ईस्ट की तरफ, लेकिन इस तरफ हमको अच्छा चांस मिल गया यूपी की तरफ, फिर कभी चांस मिलेगा तो फिर जाऊंगी मैं यूपी की तरफ, लेकिन आइडिया तो आ गया है क्या है। तो बहुत सेवाएं हैं, भरपूर है, ब्राह्मण भी और सेवाएं भी और खुशी भी और इंस्पिरेशंस भी। तो बाबा कहते हैं ना भारत तो आगे ही जाएगा, तो ब्राह्मणों के जीवन में भी हमने देखा बहुत आगे जा रहा है। तो अभी देखो ना यहाँ पर भी कितना अच्छा बनने वाला है हॉल, है ना, बाबा यहाँ पर भी हमको भरपूर कर रहे हैं। इस हाल में बैठकर आपको याद आती है पुरानी ओम शांति भवन जो पहले पहले बना था, अभी फिर और अच्छा बनने वाला है। तो इस प्रकार से बाबा हम सबको भरपूर कर रहा है हर प्रकार से। तो ये तो मैंने भारत का बताया, बाकी विदेशियों का 2-3 ग्रुप्स में मैं थी। तो इस बार हम लोगों ने ये विशेष का किया है विदेशियों के लिए कि हमने एक ग्रुप बनाया है। उसमें क्या होता है कि किसी को कुछ तकलीफ हो जाती है शरीर की, है ना, थोड़ा सा कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, शरीर की कोई बीमारी हो जाती है, या कुछ अनकॉन्शियस हो जाते हैं लोग, कुछ भी हो, तो उनको संभालने के लिए एक ग्रुप बनाया है। तो वेल बीइंग ग्रुप कहते हैं उसको, केयर एंड वेल बीइंग। तो उनके लिए अलग से एक कमरा बनाया है, वो जहां जाके रिपोर्ट करें, उनको तुरंत एम्बुलेंस में भेजना है, कहाँ जाना है, वो हम उनको मदद कर सकें। तो इस प्रकार से ये ग्रुप उनकी सेवा के लिए बनाया है, और सारा दिन एक बहन होती है या 2 बहन होते हैं, यदि उनको मन की भी कोई बात बतानी है, नहीं तो उनको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो इसलिए वहां पर रख देते हैं, एक बहन बैठी रहती है सुबह दोपहर शाम, तो जिनकी ड्यूटी होती है तो वो बैठते हैं, तो किसी को कुछ भी पूछना हो तो वो आए, अपना मन की समस्या को हल करके ले जाए। इससे हमने देखा है कि उनको ना देर नहीं लगती, जैसे अपॉइंटमेंट बनानी है, टाइम नहीं है किसी के पास, तो वो बिना झिझके के आ जाते हैं, आकर के अपनी बात या कोई भी बात है मन की वो सुना के क्लेरिफिकेशन लेके मेथड्स लेके चले जाते हैं। तो ये इस बार हम लोगों ने नया ऐड किया है विदेशियों की सेवा। बाकी क्लासेस तो चलती हैं, है ना, हर प्रकार से भट्टी भी होती है ज्ञान योग धारणा की, लेकिन ये विशेष उनको अटेंशन दिया जाता है, कोई भी बात है आकर बैठो और सुनने वाला बैठा है और तुम अपनी समस्या का हल लेके जाओ। तो हमने उनसे पूछा आपको कैसा लगा ये, तो उन्होंने कहा इससे बहुत हमको एक ये मन के अंदर रहा कि नहीं तो बनानी पड़ती थी अपॉइंटमेंट, यहाँ तो कोई बैठा ही है ना, जैसे दादियां करती थी कभी भी चले जाओ, इस प्रकार से हमने ये वाला थोड़ा सा नया लगाया है सिस्टम में, तो बहुत फायदा हो रहा है विदेशियों को। तो मैंने देखा सब खुश होके जा रहे हैं, तो बाबा खुश होकर के करा के ही भेजता है सब कुछ, हर प्रकार से तन मन धन से। बाबा भी कितनी सेवा कर रहे हैं हमारी, हम कहते हैं हम देते हैं लेकिन बाबा ही कर रहे हैं, किसी ना किसी को निमित्त बना करके ये सेवा कर रहे हैं। ओम शांति। डेनिस बहन कल आई है फिलीपींस से, मैं कल जा रही हूँ फिलीपींस आज संगम विशेष संगम। डेनिस बहन एक महीना थी फिलीपींस में, वहां पर अलग प्रकार की सेवा थी, इनके लेवल की वीआईपी की भी सेवा थी, मुस्लिम की भी सेवा थी, है ना, बड़ी ब्रांचेस अलग अलग ब्रांचेस क्रिश्चियन मुस्लिम है, अलग अलग प्रकार की सेवा। और मैं अभी जा रही हूँ क्रिसमस मनाने वीके के साथ, वहां फिलीपींस में बहुत क्रिसमस मनाई जाती है, तो वहां पर मैं जा रही हूँ क्रिसमस मनाने, और जापान में जा रही हूँ न्यू ईयर मनाने। तो इस बार हमारा वहां पर बन गया प्रोग्राम, फिर 18 जनवरी करके फिर हम लोग शिवरात्रि में वापस आएंगे। सो थैंक यू सिस्टर डेनिस, ओम शांति। बाबा को याद करते दो मिनट, बाबा ने कहा याद करो है? कौन सी स्थिति की याद, कोई भी स्थिति
आप बताइए।
देही अभिमानी, देही अभिमानी जो पहला शब्द था ना बाबा की मुरली का, वही ले लेते हैं हम।